एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है और जिस पर अक्सर गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है। कल्चरल अप्रोप्रिएशन, मतलब सांस्कृतिक विनियोग।
बिल्कुल, आपने शायद सोशल मीडिया पर या खबरों में या हो सकता है दोस्तों के साथ भी इस पे चर्चा सुनी होगी। कोई कहता ये ठीक है, कोई कहता ये बिल्कुल गलत है।
हाँ, बहुत कन्फ्यूजन है।
इसी उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है एक किताब, पीटर ब्लिंट और पैटी टी लेनार्ड की कल्चरल अप्रोप्रिएशन। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे।
हाँ, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हम सब ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ लगातार मिलजुल रही हैं। मतलब हम एक दूसरे के पहनावे, संगीत, खाने पीने की चीजें अपनाते ही रहते हैं।
रोजमर्रा की बात है, पर सवाल ये उठता है कि कब ये लेना देना एक अच्छी सीखने सिखाने वाली बात रहती है और कब ये किसी को चोट पहुंचा सकती है या मतलब गलत बन जाती है।
एकदम सही सवाल है। और अक्सर होता ये है कि या तो लोग कहते हैं, अरे यार, कल्चर तो सबका होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
हाँ, या फिर सीधा इल्जाम लगता है कि ये तो हमारी संस्कृति की चोरी है।
बिल्कुल, ये किताब हमें इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच का रास्ता दिखाती है। ये सतही बातों से हटकर मुद्दे की तह तक जाने में मदद करती है, ऐसा मुझे लगता है।
तो चलिए पहले जरा इन लेखकों से मिल लें जिन्होंने इतने पेचीदा मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है। पीटर बलिंट, ये एक जाने माने पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनकी खासियत है मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद, और ये जो अलग अलग कल्चर वाले समाजों में पहचान के सवाल होते हैं उनको समझना।
और दूसरे लेखक हैं पैटी टमारा लेनार्ड। ये कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी में अप्लाइड एथिक्स, मतलब व्यवहारिक नैतिकता की प्रोफेसर हैं। इनका काम लोकतंत्र, नागरिकता और मल्टीकल्चरिज्म जैसे विषयों पर है।
अच्छा,
और खास बात ये है कि ये दोनों लेखक सिर्फ भावनाओं या एक्टिविज्म के नजरिए से नहीं देखते इस मुद्दे को।
हाँ, यही इनकी खासियत है, मुझे भी ये लगा। एक राजनीतिक दर्शन और दूसरा व्यवहारिक नैतिकता का विशेषज्ञ। इसका मतलब है कि वे इस मुद्दे को तर्क, न्याय और समाज पर पड़ने वाले असर के नजरिए से देखते हैं, जो इस तरह की बहस के लिए बहुत जरूरी है ना।
बिल्कुल, वे हवा में बात नहीं करते बल्कि ठोस नैतिक दलीलों के साथ अपनी बात रखते हैं।
और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक खास सीरीज का हिस्सा है जिसका नाम है व्हाट डू वी ओ ईच अदर।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था ये, हम एक दूसरे के प्रति क्या ऋणी हैं।
बिल्कुल, ये नाम ही बताता है कि किताब का फोकस नैतिक जिम्मेदारियों पर है, खासकर जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं।
सही बात है।
तो अब आते हैं मुद्दे पर, यह किताब आखिर कहना क्या चाहती है, इसका मेन मकसद क्या है?
जैसा हमने कहा, इसका मुख्य उद्देश्य कल्चरल अप्रोप्रिएशन के इर्द गिर्द जो भ्रम फैला है और जो गर्मागर्म बहस होती है उसमें थोड़ी स्पष्टता लाना है, थोड़ा ठंडा दिमाग और तर्क लाना है, आप कह सकती हैं। ये किताब हमें, यानी हम चाहे कलाकार हों, स्टूडेंट हों या बस दुनिया में क्या चल रहा है ये जानने वाले आम नागरिक हों, ये सोचने का एक तरीका देती है कि दूसरों के कल्चर से कुछ लेना कब ठीक है और कब नहीं।
और किताब उस सीधी सापाट सोच को नकारती है कि या तो सब कुछ चोरी है
या
या
सब कुछ साझा है।
हाँ
असलियत इन दोनों के बीच में कहीं है और ज्यादा जटिल है।
एकदम।
बिल्कुल, और किताब की सबसे बड़ी और शायद सबसे काम की बात यह है कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन अपने आप में, यानी सिर्फ किसी दूसरी संस्कृति से कुछ लेना, हमेशा सही या गलत नहीं होता।
अच्छा,
हाँ, ये अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इससे किसी को, खासकर किसी कमजोर या हाशिए पर पड़े समूह को, कोई ठोस पहचाना जा सकने वाला नुकसान पहुंच रहा है या नहीं।
हाँ, ये नुकसान वाली बात, यही इस किताब का केंद्रबिंदु लगता है। लेखक हमें एक तरह से गाइड करते हैं, पहले वो बताते हैं कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन होता क्या है और ये सामान्य सांस्कृतिक लेनदेन या प्रभाव से कैसे अलग है ना?
हाँ, पहले परिभाषा, फिर वो उन आम दलीलों को देखते हैं जो उसके खिलाफ दी जाती हैं, जैसे ये हमारी प्रॉपर्टी है या तुम इसे ठीक से नहीं कर सकते, मतलब प्रामाणिकता का सवाल,
हाँ,
या तुम इसे गलत तरीके से दिखा रहे हो। लेखक बताते हैं कि ये दलीलें अक्सर कमजोर क्यों पड़ जाती हैं।
और यहीं पर आता है किताब का असली निचोड़, उनका नुकसान आधारित ढांचा।
हार्म बेस्ड फ्रेमवर्क, बिल्कुल।
ये फ्रेमवर्क कहता है कि अप्रोप्रिएशन तब नैतिक रूप से गलत होता है जब वो दो खास तरह के नुकसान पहुंचाता है।
पहला गंभीर अपमान
प्रोफाउंड ऑफेंस
और दूसरा अनुचित अधिग्रहण
अनजस्टिफाइड टेकिंग।
इन्हीं दो पिलर्स पर वो पूरा विश्लेषण खड़ा करते हैं।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहले तो ये समझें कि लेखक कल्चरल अप्रोप्रिएशन को परिभाषित कैसे करते हैं। ये है क्या असल में?
देखिए, ये सिर्फ किसी की स्टाइल कॉपी करना या मान लीजिए कोई रेसिपी बनाना नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये तब होता है जब किसी ताकतवर या बहुसंख्यक समूहों के लोग किसी कमजोर अल्पसंख्यक या हाशिए पर पड़े समूह से कोई सांस्कृतिक चीज जैसे कोई प्रतीक, कोई कला, कोई रस्म लेते हैं। और ये लेना अक्सर बिना इजाजत, बिना आपसी समझ के होता है और ऐसे माहौल में होता है जहां ताकत का पल्ला एक तरफ झुका होता है।
अच्छा, तो ये सामान्य कल्चरल एक्सचेंज या लेन देन से अलग है?
हाँ।
मतलब जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं या ईद?
हाँ बिल्कुल, कल्चरल एक्सचेंज आमतौर पर बराबरी के स्तर पर होता है, आपसी सहमति से। जैसे मान लीजिए दो देशों के कलाकार मिलकर कुछ बनाते हैं,
ठीक है,
और ये कल्चरल इन्फ्लुएंस यानी सांस्कृतिक प्रभाव से भी अलग है जो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होता है। और ये एसिमिलेशन यानी विलय से भी अलग है जहां अक्सर दबाव में कोई छोटा समूह बड़े समूह की संस्कृति अपना लेता है। अप्रोप्रिएशन में ये लेने का एक्शन और ताकत का फर्क खास मायने रखता है।
ठीक है,
अब उन आम तर्कों पर आते हैं जिन्हें लेखक नाकाफी मानते हैं, जैसे ये कहना कि ये हमारी संस्कृति की प्रॉपर्टी है, इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो बहुत सुना है।
हाँ, ये कल्चरल ओनरशिप या सांस्कृतिक मिल्कियत का आइडिया।
हाँ, लेखक कहते हैं कि ये सुनने में ठीक लगता है पर संस्कृति कोई जमीन का टुकड़ा या कॉपीराइटेड गाना नहीं है। कल्चर तो आप कह सकती हैं बहती नदी की तरह है, बदलता रहता है, उसकी कोई साफ सीमा या अकेला मालिक तय करना बहुत मुश्किल है। अगर हम हर चीज पर मेरा तेरा का ठप्पा लगा देंगे तो नई चीजें बननी बंद हो जाएंगी, कल्चर शायद थम सा जाएगा। जरा सोचिए, क्या हम कह सकते हैं कि योग सिर्फ भारत का है या पिज्जा सिर्फ इटली का? ये बहुत पेचीदा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी कल्चर से कुछ भी रह सकता है, ये कह रहे हैं लेखक?
नहीं नहीं, लेखक ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिल्कियत या ओनरशिप सही सवाल नहीं है। सही सवाल ये है कि कैसे लिया जा रहा है और उसका असर क्या पड़ रहा है।
अच्छा,
क्या इससे किसी का नुकसान हो रहा है? यही असली मुद्दा है। इसी तरह वो प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी के तर्क को भी देखते हैं।
हाँ, कि बाहरी लोग किसी संस्कृति को असली तरीके से नहीं अपना सकते।
लेखक कहते हैं कि असली या प्रमाणिक क्या है ये कौन तय करेगा, ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, मतलब व्यक्ति परक है। और अक्सर ये सोच पुरानी घिसी पिटी धारणाओं मतलब स्टीरियोटाइप्स को ही मजबूत करती है कि फलां ग्रुप के लोग तो ऐसे ही होते हैं या उन्हें ऐसा ही होना चाहिए।
समझ गया। और एक आम शिकायत होती है गलत प्रस्तुति की।
जी,
कि अप्रोप्रिएशन में चीजों को तोड़ मरोड़ कर या मजाक उड़ाने वाले तरीके से पेश किया जाता है।
लेखक मानते हैं कि हाँ, गलत प्रस्तुति वाकई में चोट पहुंचा सकती है, ये एक असली समस्या है। लेकिन फिर वही बात, मूल मुद्दा सिर्फ गलत दिखाने का नहीं बल्कि उससे होने वाले नुकसान का है।
अच्छा,
खासकर तब जब कोई ताकतवर समूह किसी कमजोर समूह की कहानी अपने तरीके से दुनिया को सुनाए और उनकी अपनी आवाज दब जाए, तो घूम फिर के बात फिर नुकसान पर ही आ जाती है।
चलिए, तो अब आते हैं लेखकों के अपने नुकसान आधारित ढांचे पर।
हाँ।
पहला पिलर है गंभीर अपमान, प्रोफाउंड ऑफेंस। ये किस तरह का नुकसान है, क्या मतलब है इसका?
देखिए, ये सिर्फ किसी को बुरा लगना या कह लीजिए नाराज हो जाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा काम है जो किसी इंसान या पूरे समूह के आत्मसम्मान, उनकी पहचान और समाज में उनकी बराबरी की हैसियत पर सीधा हमला करता है। ये अक्सर ऐसी चीजों या रिवाजों से जुड़ा होता है जो किसी समुदाय के लिए पवित्र हो, जिनका गहरा आध्यात्मिक या ऐतिहासिक मतलब हो।
जैसे कोई उदाहरण जिससे ये बात और साफ हो, क्योंकि अपमान शब्द तो बहुत इस्तेमाल होता है।
हाँ, किताब में एक जाना माना उदाहरण दिया गया है अमेरिका में नेटिव अमेरिकन समुदायों के पवित्र वॉर बॉनेट का, वो जो पंखों वाला सिल्क का ताज होता है।
हाँ हाँ, देखा है फिल्मों में।
हाँ, तो कुछ लोग इसे फैशन एक्सेसरी की तरह म्यूजिक फेस्टिवल या पार्टियों में पहन लेते हैं, जबकि कई नेटिव अमेरिकन संस्कृतियों में ये कोई टोपी नहीं बल्कि बहुत सम्मान की चीज है। ये बहादुरी और खास कामों से कमाई जाती है। उसे यूं ही पहन लेना सिर्फ बेइज्जती नहीं है बल्कि ये उस चीज का मजाक उड़ाना है जो उस समुदाय की पहचान और उनके मूल्यों से गहराई से जुड़ी है। ऐसा करके पहनने वाला उस पूरे समुदाय के प्रति गहरा अनादर दिखाता है।
अच्छा, तो ये सिर्फ किसी की भावनाएं आहत होने से ज्यादा सीरियस मामला है। इसकी कसौटी क्या है फिर? कैसे तय हो कि ये गंभीर अपमान है या सिर्फ किसी को बुरा लगा?
कसौटी ये है, क्या वो काम ऐसा है जिससे उस मूल संस्कृति के लोग अपने प्रति नफरत या बेइज्जती दिखाने वाला मान सकते हैं? क्या वो काम उन्हें समाज में बराबर का दर्जा और सम्मान देने से इनकार करता है? क्या वो उनकी पहचान के जरूरी हिस्से पर चोट करता है? अगर जवाब हाँ है तो ये गंभीर अपमान हो सकता है। ये एक ऊंचा मायार है, सिर्फ नाराजगी नहीं।
ये बात महत्वपूर्ण है। भारत में भी अपमान या भावनाएं आहत होने की बात अक्सर उठती है। शायद ये गंभीर अपमान का कॉन्सेप्ट हमें उन बहसों को ज्यादा गहराई से समझने में मदद कर सकता है।
हो सकता है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अनुचित अधिग्रहण, अनजस्टिफाइड टेकिंग। ये किस तरह का नुकसान है?
ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, अनुचित अधिग्रहण। आसान शब्दों में क्या मतलब है इसका?
इसका लेना देना चीजों के इस्तेमाल, पैसे और सामाजिक न्याय से है। ये तब होता है जब किसी कल्चर की कोई चीज या प्रैक्टिस इस तरह से ली जाए कि वो शोषण जैसा लगे, या वो उस मूल समुदाय की अपनी संस्कृति और उससे जुड़े आर्थिक फायदों को कंट्रोल करने की ताकत को कमजोर करे।
मतलब कब कोई लेना अनुचित या अनजस्टिफाइड बन जाता है? क्या शर्तें हैं इसकी?
आसान भाषा में कहें तो जब बाहर वाले किसी कल्चरल चीज को लेकर उससे पैसा या नाम कमाए, जबकि उस चीज को बनाने वाला या मूल समुदाय पीछे रह जाए, उसे कोई फायदा ना मिले, या शायद उसे अपनी ही चीज से कमाने से रोक दिया जाए।
अच्छा,
ये तब भी अनुचित है जब इस लेने की वजह से उस समुदाय के बारे में गलत या नुकसानदेह कहानियां और फैले और उनकी अपनी बात कोई सुने ही नहीं।
इसका भी कोई उदाहरण जैसे वॉर बॉनेट वाला था?
हाँ, किताब में एक फैशन ब्रांड केटीजी का केस है। उन्होंने एक डिजाइन इस्तेमाल किया जो कनाडा के इनुइट समुदाय के एक शमन धर्मगुरु के बनाए पवित्र कपड़े जैसा दिखता था, लगभग वैसा ही।
ओके।
ये बिना इजाजत और बिना कोई पैसा दिए किया गया। लेखक कहते हैं कि ये अनुचित अधिग्रहण है क्योंकि कंपनी ने उस कला से पैसा कमाया, लेकिन बनाने वाले कलाकार और समुदाय को कुछ नहीं मिला, उन्हें अनदेखा कर दिया गया। ये उनकी सांस्कृतिक विरासत का बिजनेस के लिए इस्तेमाल था, जबकि अक्सर ऐसे स्वदेशी कलाकार अपनी कला को पहचान दिलाने और उससे गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
समझ गया। तो ये दोनों तरह के नुकसान, गंभीर अपमान और अनुचित अधिग्रहण, इस बात पर निर्भर करते हैं कि चीजें किस संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। लेखक इस पर बहुत जोर देते हैं, है ना? खासकर इतिहास और ताकत के रिश्तों पर।
बिल्कुल, इतिहास बहुत मायने रखता है। जैसे अगर किसी समुदाय पर सालों तक राज किया गया हो, उन्हें दबाया गया हो, उनकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की गई हो, जैसा उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म में हुआ, तो आज जब कोई बाहर वाला उनकी चीजें लेता है तो वो पुराने जख्म हरे हो सकते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
ये समझना जरूरी है कि चीज लेना तब ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब लेने वाला ग्रुप ताकतवर हो और देने वाला ग्रुप कमजोर या हाशिए पर हो। ये ताकत का फर्क, पावर इम्बैलेंस ही अक्सर तय करता है कि लेना देना कितना नैतिक है या अनैतिक।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो किताब से कुछ बड़े और जरूरी पैगाम या थीम्स निकल कर आते हैं। पहला तो यही कि कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, संदर्भ ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। कोई चीज सही है या गलत, ये हर स्थिति में अलग होगा। ये वहां के इतिहास, ताकत के रिश्तों और लेने के तरीके पर निर्भर करेगा।
हाँ, और अगर इसे भारत से जोड़े तो सोचिए हमारे देश में ही कितनी विविधता है। एक इलाके की चीज दूसरे इलाके में अपनाई जाती है। कब ये अच्छा लगता है, जैसे कोई त्योहार साथ मनाना, और कब ये चुभता है, जैसे किसी खास समुदाय के पहनावे का मजाक उड़ाना या गलत तरीके से दिखाना। ये सब कॉन्टेक्स्ट पर ही तो निर्भर करता है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा सबक, ताकत मायने रखती है, पावर मैटर्स। ये सिर्फ कल्चर की अदला बदली का मामला नहीं है, ये सामाजिक न्याय, पुराने जख्मों और आज के ताकत के समीकरणों से जुड़ा है।
भारत में भी हम इसे देख सकते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो या शहर बनाम गांव के कल्चरल उधार में। कौन किससे ले रहा है और उनके बीच रिश्ता कैसा है, ये बहुत अहम हो जाता है।
तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल संदेश, नुकसान ही असली पैमाना है, हार्म इज द मेजर। बहस को ये मेरा है या ये असली नहीं है जैसे अस्पष्ट दावों से हटाकर इस सवाल पर लाना चाहिए कि क्या इससे कोई ठोस पहचाना जा सकने वाला नुकसान हो रहा है, और वो दो तरह के नुकसान, गंभीर अपमान और अनुचित अधिग्रहण।
ये खास तौर पर भारत के लिए दिलचस्प है जहां अपमान या भावनाएं आहत होने पर खूब बहस होती है। ये किताब हमें गंभीर अपमान का एक ज्यादा साफ और गहरा मतलब देती है जो शायद हमारी बहसों को बेहतर बना सके, है ना?
हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चौथा पॉइंट, इरादा बनाम असर, इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट। हो सकता है किसी का इरादा अच्छा हो, नेक हो, लेकिन अगर उसके काम का असर मूल समुदाय पर बुरा पड़ रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये कह देना कि मेरा मतलब ये नहीं था काफी नहीं है।
ये भी हमें अक्सर सुनने को मिलता है ना, बचाव में कहा जाता है कि इरादा तो नेक था, पर किताब कहती है कि असर देखो, नतीजा देखो, किसको नुकसान हुआ ये देखो।
और पांचवा, कि इन सब का मकसद संस्कृतियों के बीच दीवारें खड़ी करना नहीं है। गोल इज एथिकल एक्सचेंज, नॉट आइसोलेशन। मकसद है एक ऐसा रास्ता निकालना जिससे हम एक दूसरे से सम्मानजनक तरीके से सीख सकें, जुड़ सकें, और ये सबके लिए फायदेमंद हो।
भारत जैसी विविध जगह के लिए तो ये और भी जरूरी है। हमारी ताकत ही इस लेन देन में है। सवाल बस ये है कि इसे स्वस्थ और न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो इस मुद्दे को समझने के लिए चाबी की तरह काम करती हैं, जैसे कुछ मुख्य विचार या कह लें कि सूत्रवाक्य।
हाँ, जैसे पहला मुख्य विचार ये है कि किसी चीज को अपनाने की नैतिकता उसके संदर्भ, तरीके और नतीजों पर टिकी है, खासकर तब जब ये ताकत और प्रिविलेज की लाइन के आर पार हो रहा हो। मतलब ये सिर्फ उधार लेने जैसा आसान मामला नहीं है, इसके पीछे पूरा सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना देखना होगा।
बिल्कुल। दूसरा खास विचार, गंभीर अपमान और सिर्फ बुरा लगना या असहज होने में फर्क करना जरूरी है। गंभीर अपमान तब है जब किसी की इज्जत या पहचान पर हमला हो, जब किसी पवित्र या गहरी मीनिंग वाली चीज को छोटा बनाकर पेश किया जाए। ये बहस के लिए एक ऊंचा लेकिन जरूरी स्टैंडर्ड सेट करता है, वरना हर बात पर लोग आहत आ सकते हैं।
तीसरा विचार जो मुझे बहुत काम का लगा, कल्चर पर मिल्कियत या ओनरशिप का आइडिया बहुत उलझाने वाला है। इससे बेहतर सवाल यह है कि क्या ये लेना शोषण कर रहा है? क्या ये उस समुदाय की अपनी कहानी कहने और अपनी विरासत को संभालने की ताकत को कमजोर कर रहा है? ये ध्यान प्रॉपर्टी राइट से हटाकर न्याय और असर पर ले जाता है।
और चौथा अहम विचार, कल्चरल अप्रोप्रिएशन पर बहस असल में न्याय की बहस है। किसके पास ये ताकत है कि वो तय करे कि किसी कल्चरल चीज का मतलब क्या है, इस लेन देन से फायदा किसे हो रहा है, और जब कल्चर को बाजार की चीज बना दिया जाता है तो उसका नुकसान कौन उठाता है? ये कल्चर के मुद्दे को बड़े सामाजिक न्याय के सवालों से जोड़ता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ फैशन या ट्रेंड की बात नहीं है।
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें। कोई आम इंसान इस सोच का इस्तेमाल कैसे कर सकता है?
बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पर ये फ्रेमवर्क हमें सोचने के लिए कुछ सवाल देता है। किसी दूसरी संस्कृति की कोई चीज अपनाने से पहले हम खुद से पूछ सकते हैं, इसका इतिहास क्या है? क्या ये उस संस्कृति में पवित्र या बहुत खास मानी जाती है? क्या मैं इसका मतलब और अहमियत समझता हूँ? कहीं मैं अनजाने में किसी गलत धारणा या स्टीरियोटाइप को तो बढ़ावा नहीं दे रहा? सिर्फ इसलिए कुछ पहनना या करना क्योंकि वो कूल या ट्रेंडी लग रहा है शायद काफी ना हो। थोड़ी रिसर्च, थोड़ा सम्मान जरूरी है।
और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, कलाकार, डिजाइनर, लेखक, म्यूजिशियन, वो दूसरों की संस्कृति से प्रेरणा कैसे लें बिना गलत किए?
उनके लिए क्या सुझाव है? किताब का सुझाव है, पहले रिसर्च करें, समझें, सम्मान करें, और जहां तक हो सके क्रेडिट दें, चाहे वो साथ मिलकर काम करके हो, कलाबरेशन, नाम लेकर श्रेय देने, एट्रीब्यूशन, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सही मुआवजा, कॉम्पेंसेशन देकर हो। मकसद प्रेरणा लेने से रोकना नहीं, बल्कि उसे ईमानदारी और इज्जत से करना है।
और हम सब बतौर उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, हमारी क्या भूमिका हो सकती है? क्या हम कुछ कर सकते हैं?
हाँ, हम भी जागरूक हो सकते हैं। हम जो चीजें खरीद रहे हैं उनके पीछे की कहानी जानने की कोशिश कर सकते हैं। उन बिजनेस या कलाकारों को सपोर्ट कर सकते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और मूल समुदायों का सम्मान करते हैं।
अच्छा,
हम कल्चर को सिर्फ एक बिकाऊ चीज कमोडिफिकेशन की तरह देखने वाली सोच पर सवाल उठा सकते हैं। जैसे अगली बार कोई एथनिक दिखने वाली चीज खरीदें तो एक पल सोचें, ये कहां से आई है? क्या इसे बनाने वालों को इसका सही हक मिला है?
ये सोचने वाली बात है। और आखिरी सवाल, क्या ये ढांचा हमारी आपसी बातचीत को बेहतर बना सकता है, खासकर ऑनलाइन या दोस्तों के बीच होने वाली बहसों में जहां अक्सर तू-तू मैं-मैं हो जाती है?
मुझे लगता है हाँ, बिल्कुल। सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने या डिफेंसिव होने के बजाय अगर हम नुकसान के पैमाने, गंभीर अपमान, अनुचित अधिग्रहण का इस्तेमाल करें तो शायद हम ज्यादा साफ और मुद्दे की बात कर पाएंगे। इससे शायद वो जो गुस्सा और आक्रोश का चक्र चलता है, उससे बाहर निकलकर हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और शायद कोई हल निकालने की तरफ बढ़ सकें।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, या सबसे चौंकाने वाली बात? मेरे लिए तो यह है कि ये मामला बहुत नाजुक है। इसमें जल्दबाजी या आसान जवाब नहीं चलते, बारीकी, संदर्भ और धीरज की जरूरत है। अहम सवाल ये नहीं कि क्या हम दूसरों से सीख सकते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे ये काम ईमानदारी और सम्मान से कर सकते हैं। ये मुश्किल जरूर है, पर बहुत जरूरी भी।
मेरे लिए सबसे असरदार बात ये नुकसान आधारित ढांचा ही है। ये वाकई एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें मेरा तेरा या असली नकली की बेकार बहस से निकालकर न्याय, सम्मान और बराबरी जैसे बड़े सवालों पर फोकस करने में मदद करता है। और ये भी साफ है कि ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत सोच बदलने से नहीं होगा, हमें उन बड़े सिस्टम्स और ताकतों को भी देखना होगा जो ये असमानता पैदा करते हैं।
सही कहा।
ये सब इसलिए ताकि हम संस्कृतियों के बीच बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण रिश्ते बना सकें, ना कि उनके बीच दीवारें खड़ी करें।
और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर हम वाकई इस नुकसान आधारित ढांचे को, यानी गंभीर अपमान और अनुचित अधिग्रहण के विचारों को, अपनी बातचीत में इस्तेमाल करना शुरू करें, तो हमारे अपने आस पड़ोस में, हमारे ऑफिस में या हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स में जिस तरह से कल्चर से जुड़ी बातों या सेंसिटिव मुद्दों पर चर्चा होती है, वो कैसे बदल सकती है? क्या इससे ज्यादा समझ पैदा हो सकती है और टकराव कम हो सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।